لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على بحوله ودنا بطوله مانع كل عظيمة وأزل وكاشف كل غنيمة وفضل أحمده على أواتف كرمه والسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا وأتوكل عليه كافيا ناصرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون درود بھیجے محمد و آل محمد شہزادی کونین کی ذات کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا آج اس کی تیسری مجلس کہ جس میں شہزادی کونین کے حوالے سے کل کی حد تک قرآن کی تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور وقت کی قلت کی وجہ سے مطالب ادھورے رہ جانے کے باعث ہر روز یہ ہو رہا ہے کہ پچھلی تقریر کا کچھ بقیہ حصہ آج آنے والی تقریر میں بیان کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے کل کی کچھ باتیں رہ گئیں کہ جو آج بیان ہوں گی, لیکن اس سے پہلے تمام عاشقان ولایت علی و محبان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سماعت میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ ویسے تو 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تمام کے تمام مبلغ اسلام ہیں, اسلام انہی کے ذریعے سے پھیل رہا ہے, اور اب تک دنیا میں حقیقی اسلام سے اگر کوئی آشنا ہوتا ہے تو یہی 14 دروازے ہیں کہ جو ان 14 دروازوں پہ آتا ہے وہ صحیح اسلام پاتا ہے. لیکن ان 14 ہستیوں میں جو اس وقت سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ اہل تشیع کی طرف جو کھینچ کے لانے والی ذات ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے, کہ یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جب کوئی ایسا شخص کہ جو ذہنی طور پر سے پاک اور صاف ہو, کوئی تعصب کی عینک نہ لگائی ہو, اور وہ ایک مرتبہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ وہ حقیقت کی جستجو میں نکل جاتا ہے کہ آخر یہ کون سی ذات ہے, یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے اوپر اتنے مصائب پڑے اور اس نے کوئی حقیقت سے اپنے قدم کو نہ ہٹائے. یقیناً یہ ذات وہ ہے کہ جس کی پیروی کرنا حق ہے. اور یہ خطبہ فدق کہ جس کو آج میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور کل بھی تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوا, کہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شہزادی کونین دربار میں کیوں آئیں؟ اگر فدق ایک پراپرٹی کے اعتبار سے تھا, کوئی ایسی جائیداد تھی کہ جس کو لینے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کو لینا چاہتی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو, اپنے گھر کا, اپنے خاندان کا खर्चा निकाल सकें या अपने घर को अच्छा खिला सकें, पहना सकें, तो ये बाग और ये फिदक तो रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में खुद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के पास था या नहीं था? जब उस वक्त शहजादी के पास होने के बावजूद ये आलम था कि घर में तीन तीन दिन तक खाने को कुछ नहीं हुआ करता था, तो पता ये चला कि जब फिदक हाथ में था उस वक्त कभी शहजादी कौनैन ने अपने ज़ाती मफाद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो रसूल अल्लाह के जाने के बाद शहजादी को क्या ज़रूरत पड़ गई कि दरबार में आके और ये दावा करें कि बाग मेरा है मुझे वापस कर दो, ये फिदक मेरा है मुझे वापस कर दो। यकीनन इसके पीछे कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी हिकमत अमली है कि जिसको शहजादी कौनैन उम्मत मुस्लिमा के सामने उजागर करना चाहती थी कि देखो हमारा मकसद फिदक को हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद ये कि तुम्हारी आंखों पे पड़े हुए पर्दे को हटा दें। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम के जाने के बाद इतने बुरे सियासी हालात हो गए थे कि मौला का हक गजब हो गया, अब ना मौला आके ये कह सकते हैं कि लाओ मेरा हक वापस करो क्योंकि तलवार खींच जाएगी। और अगर आप तारीखी किताबें उठा के देखो तो उसमें ये लिखा है कि बाकायदा मौला कायनात को कत्ल की प्लानिंग की गई थी और किसी बड़े सहाबी ने कहा था कि जब नमाज का वक्त हो, तो उस वक्त खालिद बिन वलीद से कहा गया कि जब नमाज का वक्त हो और नमाज खत्म होने से पहले पहले अली की गर्दन उड़ा देना। लेकिन नमाज के दौरान एक खौफ तारी हुआ और ये काम ना कर सका और इस घबराहट में सलाम नहीं फेर पाया, लोग समझे कि इसने सलाम फेर दिया और उसने अभी नमाज खत्म नहीं हुई और कहा कि ए खालिद मा अमरतुका का वो काम नहीं करना कि जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है। तो मौलाए कायनात अगर खुल्लम खुल्ला सामने आ जाते कि मेरा हक दो, ये खिलाफत मेरा हक है, तो यकीनन इस्लाम के टुकड़े टुकड़े हो जाते और वो रसूल अल्लाह की मेहनत और मशक्क़त के जिसके बायस आज इस्लाम इतना ताकतवर हुआ था, दो मिनट भी बड़ी क्या बड़ी बात है, बल्कि इससे भी कम अरसे में सारा इस्लाम ख़त्म हो जाता और वो सारी रसूलुल्लाह की मेहनत ज़ाया हो जाती। तो मौलाए कायनात तो सामने खुल के आ नहीं सकते और जितने मुहिबान अहले बैत सहाबा हैं वो भी इस तरह से डराए धमकाए गए हैं कि कल की मजलिस में, ये इससे पहले वाली मजलिस में आपने सुना कि एक हफ्ते बाद सलमान फारसी की मुलाकात हुई मौलाए कायनात से। सलमान फारसी कौन? मिन्ना अहलल बैत, कि जिसे अहले बैत ये कहे कि सलमान और मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान हमारे खानदान से, हमारे अहले बैत से, और रसूल अल्लाह के जाने के बाद एक हफ्ते तक अली से मुलाकात ना हो, ये कितना बड़ा जुल्म है, इसका मतलब है कि कितने बुरे सियासी हालात थे। तो ना असहाब आ सकते हैं मौला की हिमायत में और ना खुद मौला तलवार लेके निकल सकते हैं। अब एक जात ऐसी बची है कि जिसका माशरे में एहतराम भी इतना है कि अगर वो ये काम करे तो कोई आगे बढ़ के रोकेगा नहीं, और सिंफ के एतबार से भी मर्द नहीं है कि सामने वाला तलवार लेके इसके मुकाबले में आ जाएगा, तो वो एक ही जात थी शहजादी कौनैन की जात, कि जिसने ऐसा काम करके दिखाया कि तारीख इस्लाम में आज सब्त हो गए, जब भी कोई ये खुतबा फिदक को पढ़ता है तो एक मरतबा झिंझोट जाता है अगर उसका जहन साफ हो। इस खुतबे के अंदर है क्या कि शहजादी कौनैन ने आने के बाद, कल मैंने बताया कि किस आलम में शहजादी कौनैन आई थी दरबार में, वो कैफियत कल बयान होगी आज से खुतबे के एतबार से, कि शहजादी कौनैन आई और खुतबे के अंदर पहले हम्द सना खुदा की, रसूल की तारीफ, ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद, कल मैंने एक इस तरफ आपकी तवज्जोहात मबजूल कराने की कोशिश की थी कि कुरान अपने अंदर राइज कर लो, क्योंकि शहजादी कौनैन कि तो मजलिस उसके हवाले से बात करो, मैंने सारे मासूमिन की यही अपने मानने वालों के लिए वसीयत थी और नसीहत थी कि कुरान को अपने दरमियान राइज करो, कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो। और ये खुतबा फिदक जो है इसके अंदर तकरीबन 18 या 20 आयतें हैं कि जिसे शहजादी कौनैन ने अपने इस खुतबे के अंदर इस्तेमाल किया है या उसको जारी किया है। अच्छा, ये शहजादी कौनैन की जो ज़ात है ये 18 या 20 आयतों को जो जिक्र कर रही है, ये आयतें कोई इत्तेफाकन उनके मुंह से नहीं निकल गई, या 6666 आयतों में से शहजादी को सिर्फ ये 18-20 ही आयतें याद थी, कि शहजादी को जितनी आयतें याद थी एक एक करके पढ़ती चली गई, नहीं, ये आयतों का पढ़ना इसके पीछे पसमंजर है। ये 18 आयतों जो शहजादी ने इस खुतबे के अंदर तिलावत की, इसके अंदर एक पूरी हिस्ट्री है कि देखो ये एक एक आयत में क्यों पढ़ रही हूँ 6666 आयतें, और शहजादी कोई आम खातून नहीं है, पूरी आलिमा है, हाफिजा है, पूरी पूरा कुरान इनको हिफ्ज है, लेकिन सिर्फ ये 18 या 20 आयतों को अपने खुतबे में जिक्र करना یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو میں نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے. اور یہ خطبہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ عبد المنعم حسن, یہ سوڈان کا رہنے والا ڈاکٹر عبد المنعم حسن, یہ دیکھیں شہزادی کون ہے, ان کی ذات کیسی ہے. یہ عبد المنعم سوڈان کا رہنے والا, یہ اہل سنت سے شیعہ ہوا. اور یہ شیعہ کیسے ہوا, کسی عالم کے پاس نہیں گیا, کسی ذاکر کے پاس نہیں گیا, کسی خطیب کے پاس نہیں گیا, بلکہ یہ اپنی کتاب, اس نے کتاب لکھی شیعہ ہونے کے بعد کہ نور و فاطمہ اہتدیتو, اس نے کتاب لکھی, اس کے اندر یہ اپنا پورا واقعہ لکھتا کہ میں شیعہ کیسے ہوا. کتاب کا نام کیا رکھا ہے کہ نور فاطمہ اہتدیتو, نور فاطمہ نے میری ہدایت کی. اور اس کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی جگہ گیا, غالباً مجلس ہی ہوگی, کہ وہاں گئے تو اس مجلس کے اندر ذاکر یا خطیب جو بھی تھا, اس نے یقیناً یہ شہادت کے ایام چل رہے ہوں گے, اس نے خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھا. شہزادی کی مظلومیت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ نہ کھل کے شہزادی کے فضائل پڑھے جا سکتے ہیں اور نہ کھل کے شہزادی کے مصائب پڑھے جا سکتے ہیں. جب زندہ تھی تب بھی یہی حال تھا, ان کے جانے کے بعد بھی آج بھی یہی حال ہے. اشارے اور کنائے کے ذریعے سے نکلنا پڑتا ہے, اس حقیقت بیان ہو ہی نہیں پاتی. یا ڈاکٹر عبد المنعم حسن کہتے ہیں کہ میں گیا ایک مجلس میں اور ذاکر نے خطبہ پڑھا, یہ فدق کا خطبہ پڑھا. جیسے ہی میں نے یہ خطبہ سنا, اتنا فصیح و بلیغ اور اتنے نپے تپے جملے, کیونکہ یہ تو خود سوڈان کا رہنے والا ہے, عرب ہے, اور عرب تو زیادہ بہتر اپنی زبان جانتا ہے نا کہ یہ لطافت کیسے ہے. جیسے میں اردو بولنے والا ہوں تو میرے سامنے اگر کوئی شعر پڑھا جائے تو میں کہوں گا بھائی بڑا اچھا شعر ہے, کہ دوسرا وہ آدمی کہ جس کی زبان اردو نہیں, وہ کہے گا آپ کو کیسے پتا, میں کہوں گا بھائی میں اہل زبان ہوں, میری زبان اردو ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ شعر میں کتنی لطافت ہے. تو یہ سوڈانی خود عربی زبان والا, اس نے کہا کہ جب وہ خطبہ پڑھا گیا تو ایک مرتبہ میں حیران رہ گیا کہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ, اتنے نپے تپے جملے. اس خطبے کو کہنے والا عام آدمی نہیں بلکہ عالم ہے, اور یہ عالم بھی ایسا ہے کہ یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کے کلام سے لیا گیا کلام ہے, یعنی یہ انسان کا کلام نہیں لگتے اس خطبے کے اندر, ایسے جملے ہیں. اور جب خطبہ پڑھا تو اس نے کہا کہ اس خطبے میں ایسے الفاظ تھے کہ جس نے میرے سینے کو زخمی کر دیا, میرا دل چھنی چھنی ہو گیا, اور میں اپنے زخم کے علاج کے لیے حقیقت کی جستجو میں نکلا, اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ شہزادی کون ہے, رسول کی ایک ہی بیٹی, اکلوتی بیٹی کے جس کے اوپر یہ مظالم ہوئے, اور اس خطبے کو پڑھ کے میں شیعہ ہوا. تو آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے شہزادی نے دربار میں خطبہ دیا اتنی فصیح و بلیغ کہ آج وہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بن رہا ہے. اور اس خطبے کے اندر ہے کیا, اس خطبے کے اندر ہے کیا, ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کو تلاوت کیا, یہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے. کہ آیت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے ترجمہ سن لے, پھر اس کا شان نزول بتاتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ شہزادی نے, یہ پہلی آیت ہے کہ شہزادی نے اس کو اپنے خطبے کے اندر کوٹ کیا ہے. سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 102, کہ اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو ہرگز نہیں مرنا مگر یہ کہ اسلام پر, یعنی مسلمان مرنا, یہ پوری آیت ہے. لیکن شہزادی اپنے خطبے کے اندر جب اس آیت کو کوٹ کر رہی تو یا ایھا الذین آمنوا کو لفظ استعمال نہیں کرتی, کہتی اتقوا اللہ حق تقاتہ. پہلا اشارہ تو شہزادی نے یہی کر دیا, بھائی جب آیت کوٹ کرنی تھی تو پوری آیت کوٹ کر دیتی نا, لیکن شروع میں ایک مخاطب آیت کس کو مخاطب کری, ایمان لانے والوں کو, یا ایھا الذین آمنوا. شہزادی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہٹا کے باقی آیت کو استعمال کریں, یہ بتانا چاہ رہی کہ دیکھو اب سمجھ جاؤ کہ اگر شہزادی سامنے آیت سے پہلا لفظ نکال دے یا ایھا الذین آمنوا کا, تو سمجھ جانا کہ سامنے والا ایمان والا نہیں تھا. اور یہ پہلی خطبے کے اندر 18 یا 20 آیتیں شہزادی نے کوٹ کی ہیں, اور پہلی ہی آیت جو شہزادی کوٹ کر رہی ہیں یہ آل عمران کی 102 آیت. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آگئے تو مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے تھے کہ جن کے درمیان 100-200 سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی, اوس اور خزرج. یہ دو بڑے قبیلے تھے کہ جن کے درمیان 100-200 سال سے جھگڑا چلا آ رہا تھا, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے تلواریں نکل آتی تھی, اور مہینے کیا سال اور جنگ چلتی رہتی تھی ان کے آپس میں. شہزادی یہ آیت کوٹ کر کے بتا رہی کہ دیکھو یہ آیت آئی تھی کن دو بڑے دشمنوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے, یعنی ہمارے تمہارے درمیان وہی دشمنی کی جو اوس و خجرت کے درمیان تھی. جس طرح اس آیت نے آ کے ان کو ملا دیا, اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم بھی اس آیت کے ذریعے سے ہمارے ساتھ صلح کر لو اور ہماری اتباع کر لو. یعنی شہزادی ایسی آیت نہیں پڑھ رہی, بلکہ آیت کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ دیکھو جس طرح اوس و خجرت میں دشمنی تھی اور اللہ کے رسول نے آ کے اس آیت کے ذریعے سے ان کو ملا دیا تھا, اگر تمہارے پاس ایمان ہے, اگر تمہارے پاس تقویٰ ہے, تو پھر تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ کہ جیسے اس آیت نے ان کو ملایا تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ. ایک تو یہ, اور دوسری چیز کیا کہ اس آیت کے اندر اگرچہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ پورا خطبے کو آیت جتنی بیان ہوئی ہیں ان سب کو بیان کیا جائے, لیکن بعض جگہ آیت کی تشریح کرنا بہت مشکل کام ہے. نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے بارے میں کتابوں میں کچھ لکھا نہیں, لکھا بہت کچھ ہے, بیان نہیں ہو سکتا ممبر سے. تو صرف اگر بیان ہوئی آیتوں کو میں نے بیان کیا کل کی مجلس میں, تو صرف وہی آیتیں بیان کی جائیں گی کہ جو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے, ورنہ اس کے علاوہ باقی آیتوں کو چھوڑ دیا جائے گا. تو آج کی حد تک صرف یہ آیت کہ شہزادی کیا کہہ رہی ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان اسلام کی موت پر. تو یہاں شہزادی یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو ساری زندگی نماز پڑھتے رہے, ساری زندگی روزہ رکھتے گئے, یہ ضروری نہیں کہ تمہارا اختتام بھی اسلام پر ہو, تمہاری موت بھی اسلام پر ہو, تمہارا انجام بھی اسلام پر ہو, تمہارا اختتام بھی اسلام پر ہو. بلکہ شہزادی یہ کوٹ کر کے یہ بتا رہی کہ دیکھو اگر اسلام پہ مرنا چاہتے ہو, کیونکہ اس کے بعد جب شہزادی دربار میں تعارف کرا رہی ہیں اپنا, تو اپنا تعارف کس طرح اس خطبے کے اندر اپنا تعارف کس طرح کراتی ہیں کہ یا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد, اے انسانو جان لو پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور محمد کی بیٹی ہوں, اور جو میں شروع میں کہہ رہی یہی میں آخر تک کہتی رہوں گی. یعنی ایسا نہیں کہ آج میں جذبات میں کوئی بات کر رہی ہوں کل میں آ کے کہوں گی نہیں ایسا نہیں تھا, نہیں, میں محمد کی بیٹی ہوں, آج جو کہہ رہی ہوں یہ مرتے دم تک یعنی آخر تک یہی کہتی رہوں گی. اور ایک ایک کر کے پھر اس خطبے کے اندر اتنی بہترین چیزیں ہیں, اسلام کی تعریف کی, احکامات کا فلسفہ بتایا کہ نماز کیوں اللہ نے فرض کی ہے, روزہ کیوں رکھا ہے, جہاد کیوں رکھا ہے, وہ سب انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیان ہو گئے, لیکن آج کی حد تک تو تقوی پہ بحث ہے کہ شہزادی دربار میں خطبہ سنا کے, ان کو تو یہ خطبہ سنائے ماننے والوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو خالی ہماری ہم سے متصل ہو جانے کے بعد یہ مطمئن نہیں ہو جانا کہ تمہارا اختتام بھی اسلام پہ ہو جائے گا, تمہارا اینڈ بھی ایمان پہ ہو جائے گا, بلکہ اپنے آپ کو دیکھتے رہو, ہماری احادیث ہماری تعلیمات سے اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرتے رہو. ایسا تو نہیں کہیں راستے سے ہٹ جاؤ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے ہائی وے وغیرہ پہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہائی وے پہ ہی ہوتے ہیں نا. کیوں؟ یہی ڈرائیور جب شہر کے اندر گاڑی چلاتا ہے تو ایکسیڈنٹ نہیں کرتا, لیکن ہائی وے پہ جاتا ہے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی وے سیدھی سڑک ہے, ایک ہی اسپیڈ سے جا رہا ہے آدمی, نہ اسٹیئرنگ گھما رہا ہے نہ ایکسیلیٹر دبا رہا ہے, بس ایک دفعہ پاؤں رکھا چلا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد غنودگی تاری ہوتی ہے اور آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, دماغ سو جاتا ہے اور جا کے کہیں ٹکر مار دیتا ہے. اور شہر میں کیا ہوتا ہے کہ مثلاً جیسے ہی آگے بڑھا ٹرننگ ہے اس کو موڑنا ہے, تھوڑے سے حواس وہ ہو گئے, جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ یو اے کی تو سڑکیں اتنی اچھی ہیں कि जैसे ही सीधी सड़क से टर्निंग शुरू हो, सड़क पे ऐसी लकीरें बनाई कि धड़ 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 गाड़ी उछलने लगती है, आदमी समझ जाता है कुछ सड़क में तब्दीली हो रही है। तो ये सब साइंस, ये सब अलामतें क्यों मनाई जाती है? ताकि तुम्हारे हवास इधर से उधर, तुम्हें पता चल जाए कि तुम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हो। शहजादी भी यही बता रही कि देखो एक चीज पे अमल करते करते मुतमईन नहीं हो जाओ कि तुम सही हो गए हो, ऐसा ना हो जाओ उस ड्राइवर की मानी नहीं हो जाओ कि जो हाईवे पे जा रहा है समझ रहा है कि मैं जाग रहा हूं, पता चला आंखें खुली हुई दिमाग सो रहा है कहीं जाके टकरा गए। नहीं, अपने आप को देखते रहो, कभी दाएं देखो कभी बाएं देखो, कभी मिरर सही करो कभी कुछ करो, इस अपने आप को मशगूल रखो ताकि तुम्हारा जिस्म एक्टिव रहे, तुम्हारा दिमाग सोने ना पाए। शहजादी भी यही कह रही है कि देखो तकवा इख्तियार करने के बाद ये नहीं समझना कि तुम्हारा इख्तिताम भी ईमान पर होगा, तुम मरोगे भी इस्लाम पे, बल्कि अपने आप को देखते रहो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ईमान जाहिरी ईमान नजर आ रहा है लेकिन तुम्हारे पास ईमान खत्म हो गया, तुम्हारी जाहिरी नमाज तो नमाज नजर आ रही है लेकिन वो नमाज के जो आइमा चाह रहे हैं, जो शहजादी चाह रही है वो नहीं हो, तो तकवा कहते किसे? शहजादी की शहादत के हवाले से ये सब बातें कितनी अच्छी हैं कि कैसा गनीमत मौका है हमारे पास कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनके तवस्सुस से हमें वो चीजें मिल जाती हैं कि अगर पैसे दे के खरीदना चाहे तो इंसान को ना मिल पाए। ये तो फर्श अज़ा है कि जहां पर इंसान आता है बगैर मांगे वो चीजें मिल जाती हैं कि जिसकी इंसान सोचता भी नहीं है। कि तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? तकवा किसी परफ्यूम का नाम नहीं है कि दुकान पे गए खरीद लिया लाके लगा लिया बस हो गए मुत्तकी, जैसा परफ्यूम लगाया वैसी खुशबू आने लगी। तकवा किसी ऐसी चीज का नाम नहीं है, किसी फ्लैट का नाम नहीं कि उस बिल्डिंग में रहने लगे मुत्तकी हो गए, नहीं बल्कि ये अमल का नाम है कि इंसान जितना अमल करता जाता है उतना ही मुत्तकी होता जाता है, जितने ही उसका ईमान बढ़ता है उतना ही उसका तकवा बढ़ता है। और ये तकवा जितनी आसानी से आता है उतनी, जितनी मुश्किल से आता है उतनी आसानी से चला जाता है। मुत्तकी बनने के लिए बहुत पावर मिलने पड़ते हैं लेकिन तकवा खत्म करने के लिए एक आंख की जरूरत पड़ती है, दूसरी आंख की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक दफा हराम निगाह की सारा तकवा चला गया। फिर एक मरतबा इंसान ये सोचता है कि जब इतना मुश्किल काम है और इतनी मुश्किल से हासिल होता है और छोटी सी गलती से तकवा चला जाता है, फायदा क्या है इतनी मेहनत करने का, छोड़ो रोजे कयामत होगी हमारा हम होंगे और अल्लाह होके खुद ही हिसाब किताब कर लेंगे। एक दफा अल्लाह के रसूल ने देखा कि शैतान कमर पकड़े आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी कमर में क्यों दर्द हो गया? कल एक साहब मजलिस के बाद आए, कहने मौलाना साहब माजरत में जो पीछे टेक लगा के बैठता हूँ उसकी वजह यह कि मेरी कमर में दर्द है, बैकबोन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पीछे टेक लगा के बैठता हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, उनसे तो मैंने खाली यही कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज अपने मजमे के लिए ऐलान कर दूं कि हमारी मजलिस में कोई कैद नहीं है, मर्जी आप टेक लगा के मर्जे बैठे, मर्जी आप सो जाएं, मर्जी आप ऊँग लें, मर्जी आप जमाई लें, जो करना करें, हमको 45 मिनट बोलना है हम तो पैगाम पहुंचा के जाएं, कोई सुने या ना सुने। जब लोगों ने अल्लाह के रसूल को नहीं सुना तो हमें कौन सुनेगा? दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। मेरी मुराद वो लोग नहीं है कि जो इस वक्त टेक लगाए बैठे हैं, ये तो ऐसे ही कह दिया। बहरहाल मोमिनीन है, दिन भर की जॉब के बाद जी चाहता है हमारे पीछे गद्दी है तो हम टेक लगाए बैठे हैं, तो आप लोग कहेंगे खुद तो टेक लगाए बैठे हैं हमको डांट रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, हमें बहुत मुश्किल है इस मेंबर में बैठना क्योंकि ये अरबी स्टाइल का मेंबर है और ये वो लोग तो अल्टी फल्टी मार के बैठते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, आपसे ज़्यादा मुसीबत में हम बैठते हैं इस मेंबर पर। खैर अल्लाह के रसूल ने देखा कि वो शैतान कमर पकड़े आ रहा है, कहा कि तुझे क्या हुआ? अभी अल्लाह के रसूल ने नहीं कही तो मैं कह रहा हूं कि आज मोमिन जो कमर पकड़े हुए नजर आता है तो उसकी तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, क्योंकि अक्सर कमर जो टूटती है वो शादी के बाद ही टूटती है। अगरचे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि निकाह मिन सुन्नती फमन रगबा सुन्नती फलैसा मिन्ना, कि निकाह इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह के रसूल कह रहे मेरी सुन्नत है, जिसने सुन्नत से रुगर्दानी की फलैसा मिन्ना वो हम में से नहीं है। लेकिन ये सुन्नत इतनी खतरनाक है कि नहज बलागा मेरा मौला कहते हैं कि औरत वो बिच्छू है कि जिसके डंग में भी मजा है, ना करो तो मुसीबत, कर लो तो मुसीबत। तो आज अगर कोई मोमिन कमर पकड़े नजर आए तो पता चलता है ईद आने वाली, बेचारा जो है ये शॉपिंग के चक्कर में बेचारा बेगम को घुमा घुमा के कमर टूट गई। लेकिन शैतान तो माशाल्लाह ना बीवी ना बच्चे ना कुछ, टेंशन किस बात का। तो हैरान तो अल्लाह के रसूल होंगे ना कि भाई मोमिन के अगर बाल सफेद हो रहे, हमारे बाल खैर इसलिए सफेद नहीं हुए कि अगर मोमिन के बाल सफेद हो रहे तो टेंशन की वजह से हो रहे हैं, तो शैतान को तो कोई टेंशन नहीं है ना। अल्लाह के रसूल सही हैरान हो रहे, भाई तू क्यों परेशान है, तुझे क्या हुआ। अजीब जवाब दिया उसने, कहा अल्लाह के रसूल मैं जो परेशान हूं ना, टेंशन जो मुझे सबसे ज्यादा है वो ये है कि मैं इतनी मुश्किल से मेहनत करके मोमिन को गुमराह करता हूं, बहकाता हूं, बेचारा नमाज इशा पढ़ने वाला जो है वो गुमराह हो जाता है और दाढ़ी मूंड के बाजार में आने लगता है। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं कि चलो गुमराह तो हुआ, मेरी मेहनत तो रायगा नहीं गई, लेकिन एक मरतबा उसका जमीन झुंझोड़ता है उसको, दोबारा वो अस्तगफिरुल्लाह कहता है, खुदा सारे गुनाह को माफ कर देता है, मेरी कमर टूट जाती है कि इतनी मेहनत की, इतनी मशक्कत की, इसको नमाज से छुड़ाया, इसको बेदीन बनाया, एक अस्तगफार से परवरदिगार आलम ने सारे गुनाह माफ कर दिए। तो खुदा इतना रहमान और रहीम है कि अगर तकवा हासिल करना इतना मुश्किल है और जाता इतनी आसानी से, एक गलती से तकवा खत्म हो जाता है, तो एक अस्तगफार से वापिस भी आ जाता है। शैतान ने कहा कि मैं बंदों को बहकाऊंगा दाएं से बाएं से सामने से पीछे से, और दुश्मन अगर नजर आए तो इंसान पहचान लेता है कि सामने से हमला करेगा या पीछे से हमला करेगा, लेकिन शैतान तो नजर नहीं आता ना। अब हमें क्या पता शैतान हमें कहां से बहका रहा है, और हम बहक जाएं तो खुदा के सामने हम माजूर हैं या नहीं है, कि जब खुदा कहेगा कि बताओ तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, हम कहेंगे परवरदिगार हमें शैतान ने बहकाया, हमें क्या पता शैतान किस हीले से आ रहा है, हम बहक गए। तो सही तो शैतान ने कहा था कि मैं दाएं से बहकाऊंगा बाएं से बहकाऊंगा सामने से बहकाऊंगा पीछे से बहकाऊंगा, तो खुदा जवाब में यही तो जवाब देगा ना कि अगर खुदा चार जहत से तुमको बहका रहा था तो दो जहत तो मैंने रखी थी ना तुम्हारे लिए। जब शैतान बहकाता खुदा की बारगाह में दुआ करते, जब मैं तुम्हें बचाता फौरन सजदे में चले जाते, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि तकवा इख्तियार करो, बीवी पैगाम दे रही है, और शैतान हजरत नूह को तकवा आता बड़ी मुश्किल से। इससे पहले मैं एक हदीस पढ़ दूं ताकि पता चले कि तकवा है क्या। किसी ने सवाल किया इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि मौला तकवा किसे कहते हैं। कुरान में जगह जगह आयतें कि तकवा इख्तियार को, अल्लाह का तकवा इख्तियार को, तकवा आखिर चीज क्या है। हमें यह भी तो पता चले ना कि तकवा कहते किसे हैं। भाई इतना कुरान में इत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदा से डरो तकवा इख्तियार करो, ये तकवा क्या है। तो बेहतर ये नहीं कि सवाल उसी से किया जाए कि जिसके घर में कुरान नाज़िल हुआ हो, बेहतर नहीं कि सवाल उसी से किया जाए कि जो ये कहे कि कुरान हमारे घर में नाजिल हो, हमसे सवाल करो ना। इधर उधर जाके सवाल करोगे तो कभी जवाब नहीं मिलेगा, हमसे पूछे तकवा किसे कहते हैं। रावी आया कहा कि ए फरजंदे रसूल बताइए तकवा किसे कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन युता फला युसा। इमाम आधा काम नहीं करते, हमारी जाने कुर्बानों के खुदा ने हमें पैदा ही मुहिबान अहले बैत के घर में किया है, वरना का इधर उधर पैदा होते और तहकीक करके इस रास्ते पे आना चाहते ना आ पाते। आसान काम नहीं है अपना खानदान अपना मनसब छोड़ के आना। क्या अगर हर रोज इंसान इस बात पे दो रकात शुक्राने की नमाज पढ़े कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमें मुहिबान अहले बैत क्या पैदा किया है, तो ये सारी जिंदगी की शुक्र अदा नहीं होगा। कि वो हमारे आइमा वो हस्ती है कि जो हमारी जात की इतनी फिक्र करते हैं कि आधी बात नहीं करते, दवा भी बताते हैं परहेज भी बताते हैं। आज के खैर यहां पर कुछ डॉक्टर बैठे उनको हटा के बात करें तो खैर मोमिनी ने बेचारे अच्छे, वरना आज के डॉक्टरों के क्या हिसाब किताब है। क्या आपके सर में दर्द हो उनके पास जाएं, पता चला एक डिस्प्रिन से आपकी तबीयत सही हो सकती थी, वो आपको चार टेस्ट लिख के दे देगा, क्यों, इससे फायदा होगा। लेकिन अहले बैत तो वो डॉक्टर है हमारे कि कोई मुशक्कत कोई परेशानी आने ही नहीं देते तुम्हें। हम ना सिर्फ ये कि इलाज बताएंगे बल्कि दवा भी देंगे परहेज भी बताएंगे, देखो तुम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और इस हदीस के अंदर इमाम तीन इलाज बता रहे, तीन परहेज बता रहे कि तकवा किसे कहते हैं। मौला बताइए जरा तकवा किसे कहते हैं। इमाम ने कहा कि अयुता फला युसा, तकवा की तारीफ ये कि इंसान खुदा की इताअत करे और कभी गुनाह ना करे। एक तरफ दवा दी, दूसरी तरफ परहेज बताया कि दवा ये है कि इताअत करो और परहेज ये कभी गुनाह ना करना। एक चीज, दूसरी चीज क्या, वो यज़कुरु वला यंसा कि हर वक्त खुदा को, खुदा का जिक्र करो, वला यंसा और कभी भुलाओ नहीं उसे। इंसान नौजवान लड़का हो या बच्ची हो, वैसे कितना ही शरारती क्यों ना हो, लेकिन जब घर में माँ या बाप आ जाए तो बच्चा संभल जाता है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप देख रहे हैं। नौजवानों की मिसाल ले ले, अपने मोहल्ले में शरारत नहीं करते, दूसरे मोहल्ले में जाकर करते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पे उसका बाप है, उसका भाई है, उसका मामू है, उसका खालू है, कोई देखने वाला है। इस हदीस में यही बता रहे हैं कि देखो, जब इस बात को अपने जहन नशीन बैठा लोगे कि अल्लाह का जिक्र करते रहोगे, यानी जान लोगे कि अल्लाह हर वक्त देखने वाला है, तो कभी खिलाफ खुदा की तरफ जाओगे ही नहीं। इसलिए कि जब इंसान गुनाह करता है तो उस वक्त वो खुदा की याद से गाफिल हो चुका होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कमरे में बैठे टीवी देख रहे हो, कोई नहीं हुआ, हर चैनल देखा जा रहा है, इधर से उधर घुमाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही बाप आके बैठ गए, माँ के बैठ गई, अब जो है वो जियो चल रहा है। पहले जियो क्यों नहीं चल रहा था, अब जियो क्यों चल रहा है? अब माँ का खौफ है, बाप का खौफ है। तो जब इतना सा बाप का मौजूद होना तुम्हें चैनल बदलने से रोक सकता है, तो ये जिक्र खुदा वो है कि जो तुम्हें हर चीज से रोक सकता है। इमाम यही बता रहे कि देखो, तकवा इख्तियार करो, तकवा की तारीफ ही कि वाला युसा, इताअत करो परवरदिगार आलम, कभी गुनाह ना करो। वह यूज़ करा वाला यंसा, खुदा के, खुदा को हर वक्त जिक्र करते रहो, याद करो। जिक्र का मुराद ये नहीं कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नहीं, जिक्र का मुराद ये कि जहन में होना चाहिए कि क्या कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं देखा, जिक्र कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। नहीं, जिक्र का मतलब जाकिर याद हो कि कर क्या रहे हो। उसे पता होना चाहिए कि अल्लाह अकबर पढ़ रहा हूं मैं, उसे पता होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं, उसे पता होना चाहिए दुरूद भेज रहा हूं, और किसके लिए भेज रहा हूं ये भी होना चाहिए, तभी तो इंसान रुकता है गुनाह से। और चौथी चीज क्या है कि वला यशकुरु वला यकफुर। ये तीसरी चीज कितनी अहम है कि इंसान चाहे कितना ही बद अखलाक बदमिजाज क्यों ना हो, ये इंसान की फितरत है कि अगर कोई उसके साथ नेकी करे ना, तो कोई शकी आदमी होता है कि जो किसी नेकी करने वाले के साथ बुराई करता है, वरना हर आदमी ये कहते हैं कि इस आदमी ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, मैं इसके साथ बुरा नहीं करूंगा। वो कोई शकी कल्ब इंसान होता है जो एहसान के बाद भी जो है जुल्म करता है, लेकिन अक्सरियत इंसान की ऐसी है कि हमेशा जो है उसका एहतराम करता है कि जिसने उसके बुरे वक्त में साथ दिया हो, जिसने गुरबत में उसको कर्ज दिया, कहता है यार मैं इसकी हमेशा मदद करूंगा, इसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है। जिस तरह यहाँ कोई आता है, जो रहने की जगह नहीं होती, कोई दोस्त कहता है आ जाओ मेरे पास आ जाओ, जब तक जगह नहीं है, तो जब तक वो यहाँ रहता है शुक्र अदा करता है कि यार उस वक्त इसने मेरा साथ दिया कि जब यहाँ मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। क्यों? इसलिए कि बुरा वक्त था ना। इमाम ये आखिरी जुमले में यही कह रहे हैं कि वयश्करु वला यकफुरु, कि शुक्राने नेमत करो, यानी जब नेमत मिले तो इस नेमत को एहसान खुदा बंदी जानो, परवरदिगार का एहसान मानो। जब तुम एक पानी पिलाने वाले शख्स को ये कह के मना नहीं करते हो कि इसका एहसान है कि इसने मुझे प्यास के वक्त पानी पिलाया, तो खुदा की बारगाह में कैसे कुफरान नेमत करते हो, तो तुम्हें हर वक्त नेमत देता रहता है। बस ये तीन चीजें मौला कह रहे कि ये तीन चीजें कर लो, तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे। कि तकवा तुम्हारा, तुम्हें हासिल करना है, और तकवा तुम्हें इन्हीं चीजों के जरिए से मिल जाएगा। फिर वही बात कि मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ कि आज यहाँ तक पहुँचा दूंगा, लेकिन बात आके टाइम जब देखता हूँ तो फिर रुक जाता हूँ कि बस इससे ज़्यादा अब गुंजाइश नहीं रही। लेकिन अभी दो तीन मिनट और हो सकती है बात इसके ऊपर कि तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की बारगाह में मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, और शहजादी ने जो आपके सामने यानी उनके सामने खुतबे के अंदर आयत पढ़ी, ये उनके लिए नहीं पढ़ी बल्कि तमाम मानने वालों के लिए भी पैगाम है कि वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। कि देखो, ईमान पे मरना, इस्लाम पे मरना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी मौत जब आए तो तुम इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाओ। تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو عبادت کا عادی بناؤ۔ یہ مثال میں کئی دفعہ دیتا ہوں، اسی ممبر سے دے چکا ہوں، لیکن اگر چیز اچھی ہو تو بار بار بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ دیکھیں اسلام میں واجبات تو ہیں ہی، کہ یہ کام تو تم کو کرنا ہے، محرمات ہیں کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا، لیکن کچھ چیزیں ہیں مستحب اور مکروہ۔ کہ مستحب یہ ہے کہ جو نہیں کرو تو نقصان نہیں ہے، کر لو تو تمہارا فائدہ ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ نہ کرو تو بہتر ہے، کر لو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا مائنر سا نقصان پہنچے لیکن بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن واجب اور حرام میں تو ہم کو واجب تو کرنا ہی اور حرام سے بچنا ہی ہے، اور اسلام نے اتنے مستحبات بتائے ہیں، اتنے مکروہات بتائے ہیں، کہ ایک مرتبہ میں خود یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر اتنے مستحبات آدمی انجام کیسے دے گا۔ کہ تہذیب الاسلام اٹھا کے دیکھے علامہ مجلسی کی کتاب، کہ جس میں زندگی کے ہر پہلو کے مطابق اس میں اعمال دیے ہوئے ہیں، خود مفاتی میں بھی ہے کہ سوتے میں آنکھ کھولے تو یہ پڑھو، دائیں کروٹ گھومو تو یہ پڑھو، بائیں کروٹ گھومو تو یہ پڑھو، یعنی جگہ جگہ آپ کو آئمہ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ذکر پڑھ کے اندر داخل ہو، یہ ذکر پڑھ کے باہر آؤ۔ بیت الخلاء جانے کے آداب میں ہے نا کہ الٹے پاؤں سے داخل ہو، سیدھے پاؤں سے نکلو، جب بیٹھو تو یہ ذکر پڑھو۔ آخر بار بار جگہ جگہ ذکر کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ اس لیے کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی کی جاتی ہے۔ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، رسول کے پاس، رسول کے نزدیک سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ مومن کا ایمان ہے۔ آپ دنیا کی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ تجوری کے اندر رکھی جاتی ہے۔ کوہ نور ہیرا آپ کو انگلینڈ کی سڑک پہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ بہترین میوزیم میں رکھا گیا، اس کے اندر بھی اتنے سینسیٹیو لاک لگائے گئے کہ اگر پرندہ بھی وہاں سے گزرے تو پتہ چل جائے گا کہ پرندہ آیا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک چمکتا وہ پتھر ہی تو ہے، اور اس میں ہے کیا؟ نہیں، وہ بہت قیمتی پتھر ہے، اگرچہ چرایا ہوا ہے، ہمارے ہی پتھر ہے۔ وہ کوہ نور ہیرا ہے ہی ہمارا، وہ تو ان کی عادت ہے کہ ساری چیزیں ان کے پاس ہماری تو گئی ہوئی ہیں۔ عراق پہ جب امریکہ نے حملہ کیا اور وہاں گیا تو آپ کو تو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ہم کو تو پتا چل گیا تھا یہ کہ وہاں سے امریکہ عراق سے کیا چیزیں لے کے گیا ہوگا۔ تیل تو وہ خیر لے ہی رہا ہے، اس کے علاوہ کیا لے کے گیا ہوگا؟ اس کے علاوہ جہاز بھر بھر کے ہمارے کتاب خانوں سے کتابیں گئی ہیں۔ یہ آج جو ان کی ترقی ہے نا، یہ ان کی ترقی نہیں، ان کو آتا کیا ہے؟ ہمارے، بلکہ ہمارے کے آیت اللہ وحید خراسانی کے بڑے بیٹے آغا محسن ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، ان کے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا تھا گورا۔ اچھا، اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سب پہ بلند ہے، اسلام پہ کوئی چیز بلند نہیں۔ لیکن آج اسلام کو اور مسلمان کو اتنا ضعیف اور اتنا خراب بنا دیا گیا ہے کہ پاسپورٹ پہ اگر مسلم لکھا ہو نا تو دیتے ہوئے شرماتی کہ ابھی وہ دیکھے گا کہے گا اچھا ناک بھو چڑھائے گا، کیونکہ دکھایا اسلام کو بنا دیا گیا ہے نا، ایسا اسلام ایسا نہیں تھا۔ تو وہ آغا محسن کہتے ہیں کہ یہ انگریز جو برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اسلام پہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ تمہارا اسلام ایسا ہے، تمہارا اسلام ایسا ہے، جبکہ کسی بھی مذہب کو اس کے فالوور سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ مذہب ایسا ہے۔ حتیٰ یہ انگریز، یہ عیسائیوں کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عیسائیت بھی ایسی، عیسائیت ایسی نہیں ہے۔ آج جیسی ان کی خواتین لباس پہنتی، عیسائیت میں بھی ایسا لباس تو نہیں ہے۔ 12-15 سال، بلکہ 20 سال پرانی فلمیں اٹھا کے آپ ان کی دیکھ لیں تو ان کی خواتین کیسے لباس اس میں پہنتی ہیں۔ عیسائیت بھی ایسی نہیں ہے، یہودیت بھی ایسی نہیں ہے کہ یہودی کو آپ دیکھیں کہ یہودیت ایسی نہیں، ایسی نہیں ہے۔ جو مذہب آیا تھا وہ کچھ اور تھا، فالوورز نے کچھ اور بنا دیا۔ اب وہ اسلام کو جو دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یوروپ میں سب سے زیادہ جو پھڈے باز اور دھوکے باز شخص سمجھا جاتا ہے مذہب کے اعتبار سے، مسلمان سمجھا جاتا ہے، کہ وعدہ کرے گا کہ آؤں گا، پتہ چلا نہیں آیا۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، मुहावरा है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वो यही तो है कि एक मुसलमान अपना ऐसा किरदार दिखाता है कि वो यहूद नसारा के जिनका करप्ट किरदार है वो अच्छे बन जाते हैं, और ये एक मुसलमान के गलत किरदार से पूरा इस्लाम खराब हो जाता है। और यही हुआ कि वह आगे मोहसिन से कह रहे हैं कि ये इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है। देखिए पढ़ा लिखा आदमी होता है ना तो लंबी चौड़ी बात नहीं करता। एक जाकिर ने बड़ी अच्छी बात की, देखा तकरीर जब लंबी होती है इसका मतलब है कि आलिम के पास इल्म कम है, क्योंकि जब इल्म ज्यादा होता है तो कलाम छोटा होता है, जब इल्म नहीं होता तो कलाम तूलानी हो जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल कुरान है कि इन्ना आता इन्ना कल कौसर फसल रब्बे के वन है इन्ना शाने का होल अबतर। तीन आयतें, कितना मुख्तसर कलाम, और मानी और मफाहिम के एतबार से देखें कितना कमाल इस सूरे के अंदर मौजूद है। तो इस आदमी ने बड़े एतराजात किए, अब आगा मोहसिन चाहते तो बड़ा लंबा सा जवाब दे देते कि तुम्हारे इस्लाम में ये है, तुम्हारे इस्लाम में ये, तुम्हारे इस्लाम में ये। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ये एक सवाल किया, उसके बाद वो चुप हो गया और जहाज लैंड कर गया, वो भी उतर के चले गए, वो भी चला गया। उन्होंने कहा ये बताओ टिश्यू तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल पहले ईजाद हुआ है ना, इससे पहले तुम तहारत कैसे करते थे? जो तुम बहुत इस्लाम पे इतराज कर रहे हो ना, ये टिश्यू तो अभी ईजाद हुआ है ना, इससे पहले तुम बताओ तहारत कैसे करते थे? इस्लाम का पहले ही मसला तहारत का है कि वो मजहब के जो आते ही इंसान को पाक और साफ कर रहा है, तुमको तो तहारत ही नहीं आती, तुम आके इस्लाम पे इतराज कर रहे हो। इस्लाम को तो इतना खराब बना दिया गया है, मुसलमानों को इतना खराब बना दिया गया कि कोई आदमी, नया आदमी मुसलमान बनने को तैयार नहीं। लेकिन ये शहजादी कौनैन का किरदार है कि आज भी अगर लोग मजहब हक्का की तरफ आ रहे हैं तो यही मसाइब फातिमा जहरा को सुन के आते हैं कि ये मसाइब ऐसे हैं कि जो शख्सियत शहजादी कौनैन से वाकिफ नहीं भी है ना, वो भी एक मरतबा चौंक जाता है कि ये कैसा जुल्म हुआ है, वो भी एक सिंफ नाजुक के ऊपर, जिसको ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए था जिसके ऊपर। अस्मा कहती है कि आखिरी दिन चल रहे ना शहजादी कौनैन की अपनी इस दुनिया में, कि रवायत का जुमला है कि हर दिन दूसरे दिन से बदतर मसाइब के साथ नमूदार होता था शहजादी कौनैन पे। जब हमसे खाली बयान नहीं हो पाता, हमसे खाली सुना नहीं जाता, तो शहजादी ने तो बर्दाश्त किए हैं कि इतने मसाइब, इतने मसाइब। कि अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, अस्मा बिनते उमैस कौन है? ये मौलाए कायनात के भाई जाफर की जौजा हैं। इन्हीं से बेटे अब्दुल्ला पैदा हुए थे कि जिनकी शादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह से हुई थी। जंगे मौता में हजरत जाफर तैयार की शहादत के बाद इनकी शादी हजरत अबू बकर से हुई कि जिनसे बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद अबी बकर, कि जिसे मौलाए कायनात कहते थे कि मेरा बेटा है। ये किरदार ऐसा था मोहम्मद अबी बकर का कि मौला कहते कि पैदा उनसे हुआ है लेकिन बेटा मेरा है ये। और उसके बाद अस्मा की शादी मौलाए कायनात से हुई थी कि जिनसे इनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम गालिबन कासिम था। तो ये अस्मा कहती है कि मैं खिदमत मौला में रहती थी, शहजादी कौनैन की खिदमत करती थी। एक दिन आया, यानी वो दिन आखिरी है शहजादी का, कहा ए अस्मा हमें तन्हा छोड़ दो, कमरे से चली जाओ, और देखो कुछ देर के बाद हमें सदा देना, अगर हम जवाब दे दें तो आ जाना, और अगर जवाब न दें तो समझ जाना कि अब हम इस दुनिया में न रहे। अस्मा कहती है मैं दरवाजा बंद करके बाहर चली गई और मेरा दिल हौले जा रहा है कि न जाने अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मैं आवाज दूं शहजादी जवाब ना दे, इसलिए कि जो शहजादी के साथ रह चुका ना उसे पता है कि ये कौन सी हस्ती, और अगर ये दुनिया से चली गई तो क्या हो जाएगा। ये वक्त वो है कि शहजादा हसन हुसैन मस्जिद नबवी में कब्र रसूल पे बैठे हैं और मौलाए कायनात भी मस्जिद नबवी में बैठे हैं। अस्मा कहती है काफी देर गुजरने के बाद मैंने शहजादी को आवाज दी, आवाज ना आई। एक मरतबा मैं दरवाजा खोल के अंदर गई, मैंने चेहरे पे पड़ी हुई चादर को हटाया तो एक मरतबा शहजादी के ऊपर गिर गई, हाय मेरी बीबी इस दुनिया से चली गई, अभी मैं गिर के गिरिया ही कर रही थी, एक मरतब बच्चों की दौड़ के आने की आवाज आई, मैं फौरन कमरा बंद करके बाहर निकली और मैंने चाहा कि बच्चों की तवज्जो बटा दूं, लेकिन बच्चों ने कहा हमारी मादर गिरामी का क्या हाल है। बच्चे आए और अपनी मां को इस आलम में देखा, तड़प गए, दौड़ के गए और जाने के बाद मौलाए कायनात को मस्जिद नबवी में इत्तला दी। रवायत का अजीब जुमला है कि जब शहजादा हसन हुसैन गए हैं ना दौड़ के मस्जिद नबवी में और मौला अली को ये खबर सुनाई कि माता उम्मी, ए पितर बुजुर्गवार, हमारी माँ इस दुनिया से चली गई, तो रवायत का जुमला है कि अली खड़े हुए और इस तरह से लड़खड़ा के चले, आज तक किसी ने अली को इस तरह लड़खड़ाते ना देखा। अरे अली के कदम नहीं उठ रहे, मस्जिद से बाहर निकले, एक मर्तबा गश खा के गिर गए, लोग आए, आने के बाद अली पे पानी छिड़का, अली को जब उठाया, मैं कहूंगा मौला मौला खाली फातिमा के इंतकाल की खबर सुनी, अरे आपके कदमों में ताकत ना रही, अरे आपसे खड़ा ना रह गया, अरे करबला में अपने बेटे हुसैन को देखना, अपने बेटे हुसैन को देखना, आज अली के कदम लड़खड़ाए, करबला में हुसैन के कदम लड़खड़ाए। हुसैन के कदम कब लड़खड़ाए? जब अली अकबर घोड़े से गिरे, एक मर्तबा आवाज दी, हे बाबा मेरी मदद को आना, अरे हुसैन की आंखों से बीनाई चली गई, एक मर्तबा आवाज दी, हे अली अकबर, अरे बाबा को आवाज देना, तुम्हारी आवाज किसे सारे पहुंचेगा। हुसैन पहुंचे, अजीब मंदिर देखा, जवान बेटा रेड़ियां रगड़ रहा है। हुसैन ने अली अकबर को उठाया, अली अकबर को उठाया, कहा है बेटा, है बेटा, जरा बाबा की मदद करना, तुम्हें हुसैन खेमे में लेके जाता है। हुसैन ने कहा बाबा, हुसैन ने कहा है अली अकबर, अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दो। अली अकबर ने एक हाथ गर्दन में डाला, हुसैन ने चाहा अली अकबर को उठाए, अरे जवान बेटा ना संभल पाया, करबला की रेत पे गिरा। हुसैन ने कहा अली अकबर, अरे बेटा दूसरा हाथ क्यों नहीं डालते गर्दन में? अली अकबर बताना नहीं चाहता, अरे बूढ़े बाप को बताना नहीं चाहता। कहा बेटा, बेटा ये सीने पे हाथ क्यों रखा है? कहा है बाबा, अरे एक बर्छी का फल मेरे सीने में चुभ गया है, इसकी वजह से हाथ नहीं रख पा रहा। हुसैन ने कहा, ए बेटा अली अकबर, अरे बस एक काम मुझे करना है, एक काम तुझे करना है, अरे मैं यारी मदद कह के ये बर्छी का फल खींचूंगा, तुम्हें सब्र करना है। एक मर्तबा बर्छी के फल पे हाथ रखा, एक मर्तबा अपने जज इब्राहिम को मुखातिब करके कहा होगा, ए इब्राहिम, अरे आके देखो, हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं है, अरे मेरे इस्माइल के हाथ नहीं बंधे। एक मर्तबा बर्छी पे हाथ रखा, या अली मदद कह के बर्छी खींची, अरे जवान का सीने से बर्छी का फल निकलना था, अली अकबर की रूह कब्ज।
अल्लाह वलानतुल्लाह अल कौम जालिमीन वसयालमु लजीना ज़लमु अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बहक जहरा व अबीहा व अलिहा व बनीहा, तमाम हाजिरीन और गायबीन की तमाम दीनी व दुनियावी हाजात को पूरा फरमा। बार इलाहन में जो बेरोज़गार इनको रोज़गार अता फरमा, जो बरसर रोज़गार इनके रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा। बार इलाहन में जो मरीज़ हैं बहक शहजादी कौन है, इनको शिफाए कामला आजला अता फरमा। बार इलाह बीबी के सदक़े में अपनी उनकी आखिरी उज्जत उनके बेटे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक सूरह फातिहा तमाम हाजरीन के मरहूमिन के लिए, खुसूसन उलमाए कराम मराजे कराम और जो भी जहाँ जहाँ भी शियान अली होने के नाते शहीद किए गए, तमाम के लिए एक सूरह फातिहा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسين।